नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमरीका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण।
गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। वाचप दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और PV सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।